चित्तन तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन बिचरे हमारे ध्यान में। आज का विषय है कि आत्मा क्या करता है, किसका करता है, कैसे करता है, करता है कि नहीं करता है, करता है तो उसका क्या अर्थ है, नहीं करता है तो उसका क्या अर्थ है, इन सब बातों पर अपन को गंभीरता से विचार करना है। यह तो आप जानते ही हैं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, दर्शन हैं, उनमें अधिकांश किसी ऐसी ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करते हैं जो इस जगत का सारा कर्ता धरता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई। ये तीन धर्म है ना, बहुत बड़े, सबसे ज्यादा संख्या विश्व में इनकी है। हिंदू कहते हैं राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मुसलमानों के पत्ते खुदा हिलाता है क्या, और ईसाइयों के सारे काम गॉड करता है। समस्या ये है कि जैन दर्शन में जो भगवान को माना है वो कर्ता धर्ता नहीं माना है, तो फिर इस जगत का जो भी जगत में हो रहा है उसका कर्ता धर्ता कौन है। और हमारी समस्या है कि हमारी क्या ड्यूटी है। समय सार परमागम में आचार्य कुंदकुंद देव ने इसके लिए एक पूरा कर्ता कर्म अधिकार लिखा, क्या कर्ता कर्म का नक्की करें कौन क्या करता है। जैनियों का सीधा सा उत्तर है, होता स्वयं जगत परिणाम और मैं जग का कर्ता क्या काम। विनोबा भावे ने एक बार कहा था कि हमारा देश ऐसा महान है कि 1 अरब लोगों में प्रत्येक को इस भारतवर्ष की चिंता है। अब कहीं भी रेल में, बस में ऐसी चर्चा करते लोग मिल जाएंगे कि देखो अमेरिका जाओ तो कैसा नीट एंड क्लीन है, और हमारे देश की गवर्नमेंट ऐसी नालायक है, ऐसा देश गंदा है, गंदा गंदी हो गई है, क्यों सब एक आलोचना करते मिल जाएंगे। हमने भी तो सभ्यता नहीं है ना, हम भी तो कहीं भी कुछ फेंक देते हैं क्यों। हर कोई चिंता 1 अरब की है और करता कोई कुछ नहीं। वो कहते विनोबा भावे कि यदि हम अपना घर साफ कर लें और घर के आगे की सड़क साफ कर दें तो इतना सा काम करें तो सारा देश 1 घंटे में साफ हो सकता है। करना किसी को कुछ नहीं है, पर अकेली चिंता करना है। ख्याल में है ना, अमेरिका में भी ऐसे ही होता है, हर एक आदमी को अपने घर की सफाई करनी पड़ती है, कूड़े को 1 बोरे में भर के रखना पड़ता है, 6 दिन में 7 दिन में जब गवर्नमेंट का आदमी आएगा तो उसको वो देना तो ले जाएगा, बाकी घर के सामने की सारी मेंटेनेंस, घास हो तो उसे काटना, पेड़ पौधे लगाना, सफाई करना, सड़क तक कोई दीवार नहीं बना सकते हो, मेंटेन आपको करना पड़ेगा, और आपने नहीं किया तो जुर्माना होगा। तो देश वैसे ही साफ नहीं है, हर आदमी अपना घर और अपने घर के सामने का एरिया साफ करता है तो साफ है। जैन दर्शन कहता है हे भगवान दुनिया का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, अरे सब अपना अपना काम कर लें तो सारी दुनिया का काम हो जाएगा ना। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है, कोई किसी दूसरे के परिणमन का कर्ता नहीं है। पूरा जो कर्ता कर्म अधिकार है समय सार का, उसमें 76 गाथाएं हैं, 76। एक भी गाथा में ये नहीं लिखा कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। घबरा नहीं, अभी तो कहते थे हम नहीं मानते हैं, वही कहते लिखा नहीं। और जगह न्याय शास्त्र में जहां भी कर्ता कर्म की चर्चा है, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, ये बात बताने के लिए सैकड़ों पेज लिखे और यहां एक लाइन नहीं लिखी। मानो किसी ने उनसे प्रश्न किया, ऐसा तुमने क्यों किया, तो वो कहते हैं हमारे सामने ये समस्या ही नहीं है, क्योंकि जितने भी जैनी श्रोता हमारे सामने बैठे हैं वो एक भी ये नहीं मानता है कि ईश्वर जगत का कर्ता है। एक कहकर हम अपना समय खराब क्यों करें, लेकिन एक छोटे छोटे ईश्वर सभी बन बैठे हैं, कोई देश का कर्ता बन गया है, कोई प्रांत का कर्ता बन गया है, कोई मोहल्ले का कर्ता बन गया है, कोई नगर निगम का कर्ता बन गया है, कोई अपने घर का कर्ता बना है, क्यों कोई नहीं तो अपनी देह का ही कर्ता बना है। तो ये जो छोटे छोटे कर्ता ईश्वर घर घर में बैठे हैं जो अपने को कर्ता मानते हैं, हमारी समस्या उन लोगों को ये समझाने की है कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, क्योंकि तू भी एक द्रव्य है, इसलिए तू भी किसी पर पदार्थ का कर्ता धर्ता नहीं है। तो कौन करेगा उसका काम, उसका वो करेगा, तेरा तू कर, सीधी सच्ची तो बात है। हरेक व्यक्ति, हरेक वस्तु, हरेक द्रव्य अपना अपना कार्य करता है। यह परिणमति सकर्ता, जो प्रणमन करता है वो ही करता है। एक वृक्ष का बीज उगता है ना, तो वृक्ष बीज से वो वृक्ष कौन बनाता है, उसे तो वृक्ष अपने आप बनता है, किसने बनाया बोलिए। हम बहुत अभिमान करते हैं कि हमने अपने बेटे को पाल पोस कर 25 वर्ष का किया, बड़ा किया, क्यों, और आज वो हमारी तरफ आंख उठाकर देखता नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, वो आपकी तरफ आंख उठा के देंगे? मैं आपसे पूछता हूं बहुत प्रेम से, तो आपने उसे 25 वर्ष का किया है ना पाल पोष का, कितने दिनों में किया 25 वर्ष का? अनिल भाई 25 वर्ष में, तो 25 वर्ष में तुमने 25 वर्ष का किया, इसमें क्या दम है? तुम कुछ नहीं करते तो भी 25 वर्ष में तो वो 25 वर्ष का अपने आप ही हो जाता, नहीं हो जाता बोलिए। तुम तो 10 वर्ष में 25 वर्ष का कर देते तब हम जानते। तो प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ अपने प्राणमन का कर्ता स्वयं है। अकेले जीव नहीं, पुद्गल भी, आकाश भी, काल भी। पुद्गल को तो ये चिंता है ही नहीं कि हम किसी का कुछ करें, हम भले ही संभाल के रखेंगे, रूमाल कहीं खो ना जाए, गंदा ना हो जाए, साफ कर दें, रूमाल को कोई फिक्र नहीं है क्या, तो मेरा मालिक कहीं चला ना जाए मुझे छोड़ के, क्यों नहीं, मेरा क्या होगा है? नहीं है ना। तो ये तो कोई अपना करते तो दूसरे के माथे पर थोपता नहीं है, और एक दूसरे के में कुछ करने के लिए जाता नहीं है। तो पुद्गल की तो ये समस्या नहीं है, बाकी के 5 जीव द्रव्यों की भी समस्या नहीं है। ये जीव द्रव्य जो अपने को सयाना मानता है, होशियार मानता है, बस ये ऐसा कहता है मैं अपना भी करूं, अड़ोसी का भी करूं, पड़ोसी का भी करूं, सबका नहीं करूं। एक क्लर्क अपने ऑफिसर के पास गया कि साहब मुझे बहुत जरूरी काम से आप मुझे छुट्टी चाहिए। तो क्लर्क ने कह दिया इसमें मालूम नहीं है, अभी तो वर्ष का एंड चल रहा है, इनकम टैक्स फाइल करनी है, कितना कितना काम है, इस समय की छुट्टी दी जा सकती है? तो हमेशा से नहीं जानते हो ये साहब, बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, मैं कुछ नहीं जानता। तो उसके साथी आया कि साहब इसे छुट्टी दे दो, बहुत जरूरी काम है। कि इसका काम कौन करेगा? कि मैं निपटा लूंगा। समझ गया ना, क्या कहूंगा साहब, जो भी काम इसका होगा वो मैं निपटा दूंगा, लेकिन इसको आप छुट्टी दे दो राजेंद्र जी। तो वो साहब बोले तू निपटा लेगा, तू निपटा लेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे परमानेंट छुट्टी दे देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि एक काम के लिए दो आदमी रख छोड़े थे तो तेरा काम कौन निपटाएगा? जब मैं वो भी निपटा लूंगा और इसका भी निपटा लूंगा, जब तू दोनों का काम निपटा सकता है तो मुझे दो आदमी रखने की क्या जरूरत है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि जितने समय में तू इसका काम निपटाएगा उतने समय में तेरा काम खराब होगा, और वास्तव में दोनों का ही काम खराब होगा, न उसका निपटेगा ना तेरा। तो ऐसे ही जो ये कहता है कि जो तू परिद्रव्य में कुछ करने जाएगा तो तेरा कौन करेगा? ये मेरा ये करेंगे, फिर इनका कौन करेगा? उनका वो करेंगे। तो लंबी चौड़ी परंपरा से क्या लाभ है? बोल क्या ना। मेरे पिताजी थे बहुत बुजुर्ग, तो वो 60 वर्ष की उम्र में हमने उनको रिटायर कर दिया। अब कुछ काम नहीं करेंगे आप, बिल्कुल बस अपना स्वाध्याय करो, पढ़ो लिखो, धर्म का और कुछ नहीं। और वो करीब 75 वर्ष की उम्र तक जिए, 15 साल तक उन्होंने दिन रात धर्म की पढ़ाई करते थे, वो शास्त्री हुए, समझे ना। दूसरा काम कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी बच्ची की शादी होने का प्रसंग था तो हम लड़का को खोजते थे, तो कहीं जाते थे तो लौट के आते थे तो पूछते थे वो क्या होगा, एक विकल्प उनको आता था। तो मैं कहता आपको क्या करना, आप स्वाध्याय करो। तो वो कहते थे कि तुम पंडित हो गए हो ना तो भाषण दोगे, एक मिनट में ये भी बता सकते थे क्या होगा लेकिन तुम ये भी बताओगे पर आध घंटा हमें सुन जाओगे, कि तुमसे कह दिया ना कि तुम चिंता मत करो। देखो ऐसा है कि तुम्हारे बाल बच्चों का सारा काम निबट गया है, अब तुम्हारी ड्यूटी फ्री हो गई, अब हमारे बाल बच्चों का काम हम निपटाएंगे, तुम्हारे माथे पर नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हमने तुमसे अपने बच्चों का काम निपटाया तो हमें अपने बच्चों के बच्चों का काम निपटाना पड़ेगा, और कितने लंबे चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। हम भी जल्दी फ्री होना चाहते हैं। तुम 60 वर्ष में फ्री हुए हो तो हम 50 वर्ष में फ्री होना चाहते हो। हो गए देवी भाई 50 वर्ष में सब फ्री, कोई नहीं, कोई माथे पर जिम्मेवारी नहीं, इसलिए हम इसमें तुम्हें हाथ नहीं डालने देंगे। क्यों? कि हमने तुमने हमारा किया तो हमें उनका करना पड़ेगा। तुमने अपना किया हम अपना करें, ये अपना करें, कितनी बढ़िया व्यवस्था है। बोलो तुम हमको इतना योग्य नहीं समझते हो कि हमें काम ढंग से निपटा लेंगे? क्यों? तो प्रत्येक धर्म में ऐसी योग्यता है कि वो अपना काम बहुत ढंग से निपटा सकता है, तुम्हें उसके बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये अज्ञानी आत्मा ऐसा है कि इसे पड़े बिना चैन पड़ती नहीं है। क्यों? ऑफिस का कोई काम हो, ऑफिस का कोई झगड़ा हो, अपने माथे पर बोझा तो होता है नहीं, तो घर वाले पूछते हैं, पत्नी पूछती है, बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कि तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना काम करो हम अपना काम करें, तो तुम बता नहीं सकते कि क्यों बताएं, कि तुम्हारे माथे पर 3 साल पड़ रहे हैं ना, इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी थोड़ा जाने। मैंने कहा हमको तो इन 3 साल पढ़ने की तनख्वाह मिलती है, तुम काहे को मरते हो क्या समझ गया जी हमको तो एक काम निपटाने की, क्या समझे ना, हमारी तो ड्यूटी है, वो तो हमें पूरी करनी है। अब तुम बदले क्यों चिंता करते हो, तुम्हें तो कुछ मिलने वाला है ना। ऐसे प्रत्येक द्रव अपने काम को करे और पर के काम को नहीं करे, सबसे बढ़िया व्यवस्था ये है। लेकिन हम दूसरे के काम में हस्तक्षेप किए बिना रहते नहीं हैं और दूसरा हमारा काम में सहयोग करें ये भावना को छोड़ना चाहते नहीं है। इसलिए कुनकुंडाचार्य कहते हैं, भगवान महावीर कहते हैं कि हमारी समस्या तो अपने शिष्यों के माथे पर जो करके कर्तृत्व का अनावश्यक बोझ पड़ा है उसे हटाना है। हमारी चिंता तो ये है कि तुम करता नहीं। अच्छा ठीक है, अब हम करता नहीं है, है ना? फिर कौन करेगा इस काम को? बोलो कि तुम्हें क्या करना, कौन करेगा इस काम को, तुम्हें क्या करना, बोलो। जब तक मेरे को ये भरोसा ना हो जाए कि इस काम को कोई करने वाला है, तब तक मैं नहीं छोड़ सकता। क्या तुम बता दो कि ये आदमी इस काम को करेगा तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा चिंता। हम एक वृंद बैठे थे बगीचे में, वहां एक बहुत बढ़िया पेन पड़ा था। सच्ची घटना है, हमारे साथी ने वो पेन को उठा लिया। क्यों भाई, क्यों उठाते हो? ये पड़ा है। तो पड़ा है तुम उठाते क्यों? कि न मालूम किसका होगा, इसका मालिक का तो पता नहीं है, वो कोई आया नहीं है, दो घंटे से अपने यहां बैठे हैं, यहां पड़ा है, हम नहीं उठाएंगे तो कोई और उठाएगा। मैंने कहा अच्छा, और को चोरी का पाप न लग जाए इसके लिए तुम चोरी का पाप करने को तैयार हो, क्योंकि अपने यहां तो लिखा है ना, दूसरे की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, बिछड़ी हुई वस्तु को स्वयं उठा लेना, उठाकर दूसरे को दे देना, वो चोरी है, लिखा क्या नहीं लिखा? तो फिर क्या होगा इसका, तुम्हें क्या करना, जो होगा तो हो जाएगा। लेकिन इस आदमी को ये चिंता है कि ये चीज ऐसी पड़ी है, यदि मैं नहीं उठाऊंगा तो और कोई उठा ले जाएगा। इतनी लंबी प्रक्रिया में तुझे उलझने की क्या जरूरत है, तेरी नहीं है ना, बर्बाद खत्म। तू इसका करता नहीं है ना, तो जो होगा तो हो जाएगा। तू इसका करता धरता तेरी जिम्मेवारी होती तो तू सोचता। तो उसने लिखा है समय साल में एक छंद है बहुत बढ़िया, विकल्प कहा परम करता, विकल्प कर्म के विलम। कौन करता है, क्या करता है? तो ये कहते हैं कि ये भगवान आत्मा तो सिर्फ विकल्प का करता है, परद्रव्य में भला बुरा करने का विकल्प इसमें पैदा होता है। इसके आगे की एक स्टेज और है, तो थोड़ी देर बाद बात करेंगे उसकी। क्या ये भी शास्त्र है, कलश में है। विकल्प कहा परम करता, कि वो विकल्प करने वाला आत्मा करता है। उसका नाम क्या पड़ा है? विकल्पक। विकल्पम करोति इति विकल्पकः, कि जिसके जीवन में विकल्प हो रहे हैं, विकल्प हो रहे हैं माने ऐसे भाव हो रहे हैं कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, तो ऐसे भावों का करने वाला आत्मा को बोलते हैं विकल्पक। जो विकल्पों को करे उसका नाम विकल्पक। समझे ना? जो मान लेवे उसका नाम ग्राहक, है ना, बोलते ना। तो जो विकल्पों को करे उसका नाम विकल्पक, और वो विकल्पक जो आत्मा है अज्ञानी आत्मा, तो वो क्या करता है? कि कहते वो सिर्फ विकल्प करता है, उसकी सीमा उस विकल्प तक ही है, आगे परद्रव्य में उसकी कोई सीमा नहीं जाती। मैंने परद्रव्य का भला बुरा करने का भाव किया, समझ लीजिए। और जरा उदाहरण से समझे, कि सामने एक आदमी खड़ा था और मैंने यहां से हाथ में लेके गोली चलाई और वो मर गया। मरना नहीं, मरेगा नहीं कोई। अब वो जो मरा है उसके मरण की क्रिया का कर्ता कौन है? बहुत कठिन सवाल है। पुलिस वाले, गवर्नमेंट, कानून, अदालत, वकील सब ये कहेंगे कि जिसने गोली चलाई वो हत्यारा है, वो उसका कर्ता है, उसको पकड़ो, उसे फांसी पर चढ़ा। क्यों? उस क्रिया का कर्ता कौन है? जिसने गोली चलाई। अब बोले कहते हुए वो जो मरा है तो मरण नामक काम तो उसमें संपन्न हुआ, और ये तो वहां से 200 मीटर दूर था, तो वहां ये कैसे कर सकता है? तो कहते इसने वो दबाया ना घोड़ा, तो इसको घोड़ा दबाने की क्रिया का कर्ता कहो, उसे मरने की क्रिया का कर्ता क्यों कहते हैं? समझना, इसने देखा बटन दबाया, समझ गए? तो इसे बटन दबाने की क्रिया का कर्ता कहो, वो मरने की जो क्रिया वहां हुई है वो तो उसकी आयुकरण की समाप्ति से हुई है। ऐसा भी हो सकता था कि वो जरा हिल जाता, ऐसा हो जाता तो गोली यहां से निकल जाती, तब भी ये हत्यारा होता कि नहीं होता? होता, समझा? यानी वो उसका मरण तो उसके कारण हुआ, उसका आयुकरण समाप्त हो गया था, उसको ऐसे ही निमित्त से मरना था, समझना है ना? वो बच नहीं सकता था, तो उसकी मरण की क्रिया का कर्ता जैन धर्म कहता है कि वो ही है। कहते जब हो गया, हम मरे और हम ही करता, तो हत्यारा तो कोई रहा नहीं। अब हत्यारा कोई नहीं है तो उसे फांसी पर किस बात के लिए चढ़ाया जा रहा है? किसे? जिसने घोड़ा दबाया था, घोड़ा दबाने था इस अपराध की बदली में। क्यों? ठीक है, क्या बात करते हो, तकड़ी के चोर को कतार मारी जाती है, हमने जरा सा ज्यादा बटन दबा दिया और हमने फांसी दे। क्यों? यदि उस मारने की क्रिया का कर्ता माने तो दुनिया को हमको फांसी पर चढ़ाना उचित लगता, और अकेला बटन दबाने की क्रिया का कर्ता माने तो हमें ऐसा लगता ककड़ी के चोर को कतार मारी जा रही है। ठीक है, बटन दबाने की क्रिया का कर्ता भी उंगली है, हाथ है, पुद्गल पुद्गल को छू सकता है, भगवान आत्मा को छू ही नहीं सकता है। तो आत्मा ने क्या किया कि उसको घोड़े को दबाने का भाव किया, विकल्प किया, तो आत्मा का कर्तृत्व तो उस विकल्प तक सीमित है, ना वो घोड़ा दबाने तक है, ना उसके मरण तक है, वो सब कर्तव्य की क्रिया है। लेकिन इसके अंदर जो भाव हुआ, हो सकता है ये बिल्कुल बराबर घोड़ा दबाने का भाव करता, मारने का भाव करता, और ऐसा बटन दबाता और वो घोड़ा दबता ही नहीं। क्यों? हो सकता था या नहीं हो सकता था? बोलो। लेकिन उस वक्त भी ये तो हत्यारा हो ही जाता ना, समझिया? तो कहते इसने इसको जो दंड मिला है उस किस बात का है कि इसने उसे मारने का विकल्प किया? इस सारा दंड इस बात का है। कौन सा सारा दंड? ये जो फांसी पे चढ़ाया गया। अरे भाई, जो अपने यहां धर्म के हिसाब से जो कर्म का बंध हुआ, इसे कर्म का बंध उसी वक्त हो गया कि नहीं हो गया? तब जी मरे चाहे ना मरे, चाहे घोड़ा दबे चाहे ना दबे, क्यों? और उसने मारने के हिसाब से घोड़ा दबाया तो उसी वक्त उसे कर्म का बंध हुआ कि नहीं हुआ? अदालत में सजा मिलेगी चाहे ना मिलेगी, लेकिन अभी तो हो गया कि नहीं हुआ? तो इतना बड़ा जो सजा मिली है उसे कर्म बंध की, वो कौन से अपराध की मिली है? बोलो। वो विकल्प करने की अपराध की, मारने का विकल्प किया उसने। तो कहते विकल्प कहा परम कर्ता विकल्प कर्म टेबिलम, ये विकल्पक माने से ज्ञानी आत्मा का कर्म तो अकेले उस विकल्प तक ही है। इसमें जो मन में सोचा कि मैं इसे मार दूं, बस इसकी सीमा यहीं तक है, इसके आगे इसका अधिकार नहीं है, और जितनी भी सजा इसे मिलेगी वो इस अपराध की मिलेगी। तो विकल्पक आत्मा करता है और विकल्प उसका कर्म है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। मेरी मर्यादा कहां तक है कि मैंने जो ये सोचा मारने का भाव बस यहां तक, मैंने सोचा बचाने का भाव बस यहां तक, इसके आगे नहीं है। ये विकल्प निरर्थक है कि सार्थक, बहुत मार्मिक प्रश्न है सोचना। क्या बिल्कुल निरर्थक है? क्यों? कि मेरे विकल्प के हिसाब से तो दुनिया मरती नहीं है। मैं तो ऐसा विकल्प करूंगा सब मर जाए तो मरते, और मैं ऐसा विकल्प करूं कोई ना मरे तो मरने से रुक जाए। बोलो, हम विकल्प करते कि नहीं करते हैं? किसी का जन्मदिन होता है तो जाते हैं ना, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000, बोलते कि नहीं बोलते? क्यों? एक हमारे मौसाजी थे मंजर सेठ, उनका 60वां वर्ष का दिन मनाया गया तो सारे लंगर को भोजन दिया गया और बड़े ठाट बाट के साथ में एक मीटिंग हुई और सब लोगों ने उन्हें उनकी प्रशंसा के पुल बांधे। मुझे भी उसमें जाना था क्योंकि हमारे मौसा जी थे। सब लोग कुछ ना कुछ भेंट भी लेके जा रहे थे तो मैंने कहा मैं क्या ले जाऊं, बहुत माथा खराब किया संजय। तो घर में एक किताब रखी थी, उसका नाम था मूल में भूल, स्वामी जी की किताब थी। क्या नाम है? क्या था? हमने ये बढ़िया चीज है, एक किताब ले चलते हैं और कोई सभा हो और अपन उसमें मौजूद हो और बोलने वालों में अपना नाम नहीं आए, ऐसा अभी 7 साल से तो हुआ नहीं है। तो अपना नंबर भी आया बोलने में। तो मैंने वो कहा कि देखो मैं एक किताब लेके आया हूं, इसका नाम है मूल में भूल। 7 बरस गए तो गए, कुछ किया उसने? कैसे मनाना है? और अब ऐसे मैं झूठा मंगल कामना तो कर नहीं सकता हूं। कैसी? कि तुम जियो हजारों साल, क्योंकि कोई जीने वाला नहीं है। और एक कदाचित कर भी लूं तो ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि साल में दिन हो 50,000। इससे बड़ी झूठी बात तो दुनिया में कोई होती नहीं है, 365 दिन से ज्यादा होने वाले ही नहीं है। हम अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल आज हमने एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया है कि क्या कि आज से दिन 60 दिन का हुआ कर, महीना 60 दिन का हुआ करेगा। समझ में? अभी तक महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन। अब आज से 60 का हुआ करेगा। किसने कहा? अकबर ने बीरबल से कहा। उसका मतलब समझे आप? जो तुम्हें तनख्वाह 30 दिन में जितनी मिलती है अब वो 60 दिन में हुआ करेगी, आधी होगी। चल जाए ना, बहुत होशियार था कि हुजूर बहुत ही बढ़िया किया आपने, अब तो 15 दिन की बजाय 1 महीना चांदनी रहेगी और 1 महीना अंधेरी रात रहेगी। मैं क्या उसे वो कैसे होगा? चंद्रमा मेरे हाथ में है तो महीना तुम्हारे हाथ में है, वो तो चंद्रमा की गति के हिसाब से बनता है। चंद्रमा की गति को तुम बदलो तो कितने दिन का महीना होता है? तुम्हारे बाप ने नक्की नहीं किया था कि महीना कितने दिन का होना है? और बदलना किसी के हाथ में होता तो तुम्हारे बाप दादे के बाप दादे बदल चुके होते। क्यों? वो तो चंद्रमा की गति के हिसाब से निर्णय होता है, तुम कौन होते हो? तो साल में 50,000 दिन हमारे कहने से होंगे, वो 365 दिन होते हैं सूर्य की गति के हिसाब से होते हैं। ऐसी कल्पना लोग की बातें करने से क्या फायदा है? क्यों? जब मुफ्त के ही लड्डू खाना है तो थोड़े क्यों, और थोड़े भी हो तो फीके क्यों? फिर मन के भैया फिर जम के खाओ, मन के ही लड्डू खाना है। ऐसी मैं कल्पना लोग की बातें तो करूंगा नहीं, मैंने अपने भाषण में कहा। ना वे 1,000 साल जीने वाले हैं और न दिन में 50,000 कभी साल में दिन होने वाले हैं। मैं सिर्फ एक साल के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकता क्या? लोग देखने लगे भीतर क्या कह रहा है पंडित, ये जो 60 वर्ष जैसे आपने गुजारे हैं पहले मुझे उसका हिसाब दो, मैं तो बढ़िया आदमी हूं, दिवाली तक पुराना हिसाब चुकता कर दो, मैं यहां उधार ले जा। कैसे करते थे कि नहीं करते थे? ऐसा नहीं चलेगा, पुराना चलेगा, पुराना हिसाब किताब चुकाओ मेरा ले जा। 7 साल में तुमने क्या किया? यदि अगर 1 साल भी ऐसा ही बिताना है तो मैं 1 साल के लिए भी प्रार्थना नहीं करूंगा भगवान से, क्यों 7 साल में जिसने पाप बांधे हैं 1 साल में उसमें और बढ़ जाएंगे। मेरे यदि आपके पास ऐसा कुछ प्लानिंग हो कि आगामी 1 साल में 2 साल में 5 साल में 10 साल में भी जिया तो अनिल भाई मैं ये करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि जिसका फल कम से कम मुझे नरक आदि गति में नहीं जाना पड़े, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूं, नहीं तो मैं समय मांगने से फायदा क्या है? शेर को आशीर्वाद दूं कि बेटा तू 1000 साल जी, तो अभी 10-20 साल जीता है, उसमें 1-2 लाख जीवों को मारता है तो करोड़ों को मारेगा, क्यों नरक तो साथ ही होते हैं। अब वो सच्ची घटना मालूम है, हमारे दिगंबर जैन समाज में एक सबसे बड़े सेठ थे, इनका नाम सुना होगा आपने, हुकुमचंद सेठ, नाम सुना क्या? नहीं सर, हुकुमचंद सेठ इंदौर के बहुत बड़े आदमी थे। उनकी 7 मील थी, मील समझे कपड़ा मील, राजकुमार मील, हुकुमचंद मील, मालवा मील, धीरा मील, जैसे करके कपड़े की 7 मीलें थी उस जमाने में, आज से 100 वर्ष पहले। फिर उन्होंने एक प्लानिंग की 8वां मील खोलने की, तो उनकी धर्म पत्नी ने पूछा ये क्या बात चल रही थी, ये लोग काय के लिए आए थे? कि वो एक 8वां मील खोल रहे हैं ना, उसकी प्लानिंग चल रही है। तो सेठानी का नाम था कंचन भाई, तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा सेठ जी नरक साथ ही होते हैं, समझ रहे हैं काय को राजेश्वरी से नरकेश्वरी, ये तो परिग्रह है, बहुत आरंभ परिग्रह नारकशाही था, बहुत आरंभ परिग्रह तो नरकाई के बंद का कारण है, क्या कर रहे हो तुम? उनने बंद कर दिया उसको, बस खत्म, तो साथ ही रहनी खुल के आप नहीं। तो आत्मा तो विकल्प ही कर सकता है, तो विकल्प भी काय के लिए, 1000 साल काय के लिए दी ना, काय के लिए 50,000 दिन करना, 365 दिन से काम नहीं चलता है क्या? तो झूठी कल्पना रूप में उड़ने से फायदा क्या है? जैसी ये बात बिल्कुल सफेद झूठ है ना कि 1000 साल कोई जीने वाला नहीं है और साल में 50,000 दिन होने वाले नहीं है, ऐसे ही एक दिव्य दूसरे दिव्य का करता है ये उतना ही बड़ा झूठ है। तो आज तक क्या किया तूने? सिर्फ विकल्प किया, तो वो विकल्प निरर्थक है कि सार्थक? तो वो निरर्थक भी है और सार्थक भी। बोलो पंडित जी बुलाती हूँ, कैसे निरर्थक? तो इसलिए है कि हमने दूसरे को मारने का भाव किया तो उससे उसका मरने का कोई संबंध नहीं है, हमने उसे बचाने का भाव किया लेकिन उससे उसको बचने का कोई संबंध नहीं है, उसके मरने और जीने का संबंध उसके कर्मोदय से, उसके कर्मद पर्याय से है, इसलिए तो वो विकल्प निरर्थक है, क्योंकि हमने जैसा विकल्प किया वैसा काम गारंटी से होने वाला नहीं है, तो निरर्थक हो गया। और सार्थक भी है, क्यों? कि तुमने जो वो भाव किया है शांतिलाल जी, उसके बदले में तुम्हें कर्म का बंध होगा, नरक निबोध जाना पड़ेगा, मुफ्त में छूटने वाले नहीं हो, इसलिए वो सार्थक है। उसके लिए निरर्थक है जिसके बारे में तुमने किया है, और तुम्हारे लिए सार्थक है क्योंकि उस अपराध के दंड में तुम्हें कर्म का बंध होगा। कितना घाटे का सौदा है, हम तुम्हारे बारे में कुछ करने की सोचते हैं उसमें तुम्हारा कुछ होने वाला तो है नहीं और हम कर्म से बनने वाले हैं। हमने तुम्हारा बुरा करने का सोचा, तुम्हें मारने का सोचा, उससे हमारा वो काम होने वाला तो है नहीं और हम कर्म बंद अलग करेंगे। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि तेरी सीमा सिर्फ विकल्प तक है। मुल्ला की दौड़ कहां तक है? मस्जिद तक है ना। आत्मा की दौड़ कहां तक है? विकल्प तक, बस खत्म। नब्बे नहीं 99% विकल्प निरर्थक होते हैं। जो हम विकल्प करते हैं वैसा जगत में काम नहीं होता है। अब जरा समझना, 1% जो विकल्प सार्थक हो जाते हैं ना, लोग कहते हैं मैंने एक सपना देखा था, क्यों हम ऐसा अभ्यासरी सर्कल बनाए, 20-20 जगह बने, लोग व्याख्यान आए, पंडित आए, प्रचुर में सब लोग तत्वी बात सुने और आज वो हमारा सपना बोलते कि नहीं बोलते हैं? लोग सलाब में नहीं, दिन में भी सपने देखते हैं। ये गांधी जी का सपना था स्वतंत्र भारत, क्यों ये नेहरू जी का सपना था, बोलते कि नहीं बोलते? सपना वपना क्या, मैंने विकल्प करना। उनके चित्त में एक ऐसा विकल्प खड़ा हुआ था। तो सारा देश का विकास उस विकल्प के कारण हो गया। मेरा समझना, उससे कोई संबंध नहीं है। उनने वो विकल्प किया होगा तो उससे उन्हें पुण्य बन गया होगा और वो अपने साथ में लेके गए होंगे, जहां भी होंगे वहां भोग रहे होंगे। लेकिन ये देश का जो विकास हुआ है वो उनके विकल्प के कारण नहीं हुआ। अब होता क्या है कि कोई महाभाग्यशाली ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे होते हैं कि जैसा जगत का होना होता है तो वैसा ही विकल्प करते हैं। वो जो होना है उसके अनुसार विकल्प करते हैं। ख्याल में तो बरसात में ऐसे ही विकल्प करते हैं कि बरसात हो, गर्मी में ऐसा विकल्प करते हैं गर्मी में हो, तुम गर्मी में ऐसा विकल्प करोगे बर्फ गिरे, तुम बरसात में ऐसा विकल्प करोगे बरसात नहीं हो, तो क्यों पूरा होने वाला है? समझ गया? वो ज्ञानी धर्मात्माओं के विकल्प ऐसे ही होते हैं कि जैसा काम जगत का होना होता है। इससे हमें ऐसा लगता है कि उनका सपना साकार हो गया। कोई सकार साकार किसी का होता नहीं है। जो पुण्यशाली जीव होते हैं ना, उनको भाग्य से ऐसे ही विकल्प आते हैं कि जैसा जगत में होना होता है। शायद मैंने पहले यहां कभी कहा होगा कि पुण्य का उदय किसे कहते हैं और पाप का उदय किसे कहते हैं, जानते हैं? एक सास बहू थी, सास बहू, तो सास ने बहू से कहा कि बेटा मंदिर में पंडित जी का प्रवचन है, मैं वहां जा रही हूं, तेरा क्या विचार है? कि मम्मी जी मैं यही सोच रही थी कि आज तो मम्मी जी के साथ मैं भी जाऊंगी। तो समझ लेना मम्मी का भी पुण्य का उदय है और बहू का भी पुण्य का उदय है। क्यों? और मम्मी ने कहा कहीं मैं जा रही हूं प्रवचन सुनने, तू चलेगी क्या? फिर कभी चलूंगी, अभी तो मेरे टिकट आ गए हैं। काहे के? शिकर जी जाने के नहीं, समय मांगे। समझ गए? तो समझ लेना सासू जी के भी पाप का उदय है और बहू के भी पाप का उदय है। क्यों? तो बहू की सास की मानी नहीं। क्यों? अब मेरा समझना कि जैसा होना हो वैसा ही अपना विकल्प हो तो पुण्य का उदय। तो और सरल करता हूं, बहू चाहती थी हम काश्मीर घूमने जाए और सास ने कहा कि मैं तो शिविर में जा रही हूं जयपुर। क्यों? तो हम तो काश्मीर जाएंगे। हाँ बेटा तुम जरूर जाओ, अरे यही तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं, फिर कब घूमोगी? जब बुद्धि हो जाओगी तब। तो समझने में सास के पुण्य का हो जाए। पर सास को ये विकल्प आया कि नहीं नहीं तू नहीं जाएगी, वहां मेरे साथ चलेगी, तो समझ में ना पाप क्या हो जाए। जैसा सामने वाले का प्रणमन होना है वैसा ही हमको विकल्प आए तो वो होगा सफल। तो हमारे पुण्य का उदय होगा तो वैसा होगा, नहीं तो जैसा होना है उसके विरुद्ध हमारे को विकल्प आएगा तो वो वैसा होना ही नहीं है कभी, समझा। इसलिए कहते हैं भाई विकल्प कर्म केवलम, आत्मा की सीमा तो सिर्फ विकल्प तक है, और तुम ये समझ लो कि तुम विकल्प के आगे कुछ नहीं कर सकते इस जगत का। तो अकेला विकल्प, हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ करने का फल भी हमको मिलना नहीं चाहिए ना, कि नहीं मिलेगा हम, वो भी गारंटी है जो करता सो भोगता। लेकिन जो हमको अनादिकाल से संसार में रफल रहे हैं ये कौन से पाप की सजा है, क्योंकि ये विकल्प करने वाले पाप की सजा है। बोलो। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा तो उस विकल्प के भी ज्ञाता दृष्टा होते हैं। क्या होता है विकल्प के ज्ञाता दृष्टा? सुनना जरा, सामने में कोई किसी को पीट रहा था, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है, तो उन्हें विकल्प आया कि बचाए, तो उन्होंने भैया क्यों मार रहे, क्यों मार रहे, रोका। तो उन्हें ये जो भाव आया बचाने का, वो ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं ये तो मैं तो इसको भी जानता हूं कि मेरे को ऐसा भाव आ गया, मेरे ऐसे कहने से वो मान जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसको कोई अपेक्षा नहीं है, पर उसने कहा तो मुंह से निकल गया अरे मत मारो, तो वो उसका ज्ञाता बनता है। क्या क्या काय का बना, वो काय का करता बना, उसको जानने की क्रिया का करता बना, वो जो विकल्प आया उस विकल्प की क्रिया का करता नहीं बना। बोलते आत्मा क्या करता है और क्या नहीं करता है।